नाम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 5 दिसंबर 1992 को प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम
पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण 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 नारायण। भगवद गीता में भगवान क्रमशः प्रकट होते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं भगवान। पहले अध्याय में भगवान सारथी रूप से आए हैं, सारथी रस चला रस चलना वाला मुख्य नहीं होता है, मुख्य तो रस ही होता है, रस का मालिक होता है, बड़ा होता है, नरस रावत एक नौकर होता है। तो भगवान एक सारथी रूप से रस चलाने वाले रहे, परंतु एक विलक्षण बात देखो आप, थोड़ा ध्यान दो। कौरव सेना में भीष्म जी मुख्य है, 10 दिनों तक वे सेनापति रहे और सबके पिता महा है। ये दो पार्टी, एक दुर्योधन आदि की एक युधिष्ठिर आदि की, दोनों के दादाजी महाराज पूज्य आदरणीय, और सूरवीर इतने थे उनकी जोड़ी का कोई नहीं ऐसा। संसार में ये मौत सबको मारती है, तो भीष्म महाराज चाहे तब मरे, नहीं चाहे तो न मरे, ऐसा भगवान था। ऐसे दुनिया में इतिहास में देखने में कितने गाड़ी में आते हैं ऐसे भीष्म महाराज और सेनापति। जब दोनों सेनाएं युद्ध करने के लिए उद्यत हो गई, उस समय दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया है और बड़ी चालाकी से बड़ी चतुराई से अपनी बात कही है, जिससे द्रोण खूब जोर से युद्ध करे। भीष्म और द्रोण इनके ऊपर दुर्योधन का खास विश्वास नहीं था, वो समझता है कि उभय पक्षपाती हैं ये, इस बात से द्रोण को विशेषता से राजी किए, उनके पास गए, प्रशंसा करी चालाकी से, और वो चालाकी द्रोणाचार्य महाराज समझ गए। उसका द्रोणाचार्य बोले कुछ नहीं, इसका अनुमोदन करें वो तो करेंगे, सिर्फ चालाकी से बात करता है, इस बार से अनुमोदन जैसे नहीं किया जा सकता, विरोध कहे तभी युद्ध का मौका है, खटपट हो जाए आपस में एक एक सेना में, चुप रहे। तो दुर्योधन तो बहुत होशियार था, राजनीति राजा वचन मब्रवीत ऐसा कहा है, राजनीति में बड़ा कुशल था। तो उसने जाते हुए कह दिया कि आप लोग सब मिलकर भीष्म जी की रक्षा करो, ये दो को ही राजी करना था, ऐसे करे चले गए। तो भीष्म जी ने विचार किया कि द्रोणाचार्य बोले नहीं और मैं भी नहीं बोलूंगा तो ठीक नहीं है, पाया जाएगा मन में। भीष्म जी तो बच्चे हैं, दुर्योधन भी बच्चा है, युधिष्ठिर भी बच्चे ही है, दादाजी महाराज है। तो तस्य संजन यानी हर्षम, उसको हर्ष पैदा करते हुए सिंह के समान गर्जना करके जोर से बजाया। तो तस्य संजन यानी हर्षम संघं तथो आया, ये प्रयोग एक तरह से ठीक नहीं है। हर्षम संजनयन दर्शन दो, हर्ष को पैदा करते हुए शंख बजाए, ऐसा नहीं, प्रयोग ऐसा होना चाहिए शंख बजाते हुए हर्ष पैदा किया। क्यों? हर्ष पीछे हुआ, शंख पहले बजाए। तो शंख दो प्रतापवान संजनयन हर्ष को पैदा करते हुए, तो क्या तात्पर्य है? तात्पर्य इसका यह है, मानो कारण पहले और कार्य पीछे होना चाहिए, कार्य पहले कारण पीछे, में कार्य पहले कारण कारण पीछे, है ना सब। हर्षम संजनयन दधमौ होना चाहिए कि संघं ध्वायमान और हर्षम संजनया महासो, मानो संघ बजाते हुए भीष्म जी को हर्षित कर दिया, विरोधन को हर्षित कर दिया, ऐसा बात नहीं है। ऐसा प्रयोग क्यों किया? इसका तात्पर्य है कि भीष्म जी महाराज जोर से शंख बजावे और हर्ष नहीं हो, ये बात हो ही नहीं सकती, अवश्य भावी हर्ष होगा, इस वास्ते हर्ष को पैदा, हर्ष में समझाने, हर्ष पैदा होगा ही, ये आवश्यक बताने के लिए संजन जो सत्संग बजाया। तो संघ बजाया था दुर्योधन को राजी, संजन हर्षम उसको हर्षित करने के लिए। अब सेना बहुत बड़ी थी महाराज, 11 अक्षोणी सेना और उधर 7 अक्षोणी सेना, बहुत मीलों में, तो वो संघ सुना सबने भीष्म जी का, संघ सुना तो सबने संघ बजा दिए। अब जितने कौरव पांडव थे सबके संघ बजे जोर से, संघांत पृथक पृथक अलग अलग संघ बजाया। तो पांडव ने बजाए, कौरव ने बजाए, दोनों संख्या संघ बजे। तो संघ बजने का तात्पर्य अब युद्ध होने की तैयारी है, उस अवसर से चलेंगे, संघ बच गए हैं, ये सैनिकों ने समझा। और महाराज ने संघ बजाया दुर्योधन को खुश करने के लिए। अब इस तरह से संघ बजे युद्ध की तैयारी हुई। तो भीष्म जी महाराज इतने प्रतापवान, तो कुरुवंशियों में बड़े श्रेष्ठ, दोनों वंशों के दादाजी महाराज, वे शंख बजाते हैं पहले, तो पांडव सेना में भी पहले शंख महाराज का बजना चाहिए, युधिष्ठिर का अथवा भीमसेन का बजना चाहिए, जो भीमसेन मुख्य था सेना में, उसका शंख बजना चाहिए। परंतु आप विचार करो, एक आश्चर्य बात है, संघ से पहले संघ बजाया कृष्ण भगवान ने, तथा श्वेत ही रहे रूपे महसी चंद्र स्थित हो माधव पांडव स्थित शंखो दधमो, क्या कृष्ण बहुत आगे। तो इसने संघ बजाया, तो संघ पहले सारथी संघ बजा हुए, क्या सारथी को अधिकार है युद्ध की घोषणा करने का? उधर तो ठीक है, भीष्म जी है मुख्य बजा हुई, भीष्म बजाया सब बजाया। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य अभी भगवान सारथी रूप से है, अर्जुन की आज्ञा पालन करने वाले इस बात से ब्राह्मण संस्थापे वे जुते हो अच्युत दोनों सेना बीच में खड़े करो हमारे चलो ये अर्जुन हुकुम देगा तुम रसी है सारथी सारथी तो कोई काम करना पड़े जो रसी का है परंतु संघ पहले बजाया तो हमारी एक कहावत है कि वासा प्रधानम खर्चो योग्यताया ऐसा एक श्लोक आया है कि भगवान शंकर महादेव है परंतु उनकी वेशभूषा अच्छी नहीं थी और विष्णु भगवान की अच्छी तो समुद्र ने कन्या विष्णु भगवान को दी क्यों कपड़ा पड़ता प्रधान हुए वो आदमी प्रधान होता है तो वही प्रधानता देगी। एक दूसरा वाक्य आता है कि स्थानम प्रधानम खलु योग्यताया योग्यता के स्थान प्रधान होता है अच्छे स्थान पर बैठ जाए वो छोटा भी बड़ा होता है सबसे बड़ा माना जाता है स्थान प्रधान होता है। तो भगवान का कोई कपड़े बढ़िया थे एक स्थान बढ़िया था साधारण कपड़े थे कोई रत्न अवसार थी मूक्ष थे कोई बड़े नहीं थे। तो ये जो बात आई भाषा प्रधानम स्थानम प्रधानम है ये किन के लिए अयोग्यों के लिए कपड़ा बढ़िया दी अच्छा दीजिएगा स्थान पर उसे अच्छा दिखेगा इस स्थान और कपड़ों से बड़ापन होता है छोटे का पर बड़ा होता है उससे स्थान का प्रधानता हो जाती है उसकी खुद की नहीं। मद्रास में पार्थ सारथी का मंदिर है हम गए थे दर्शन करने को पार्थ सारथी मंदिर अरे पार्थ सारथी का मंदिर उसमें भगवान का मंदिर है वो पार्थ सारथी का मंदिर। तो ये चाहे कहीं बैठे इनकी प्रधानता ही रहेगी चाहे नौकर बढ़ जाए बड़ा बढ़ जाए छोटा बढ़ जाए। तो विष्णु जी महाराज संघ बजाते हैं जैसे भगवान कृष्ण संघ बजाते हैं अर्जुन फिर बजाते हैं भीमसेन फिर बजाते हैं युधिष्ठिर फिर ये फिर बजता है शंकर नकुल और सहदेव ने बजाए सब बजाए फिर सब बाजे बजे ऐसी एक विलक्षणता परंतु है सारथी रूप से। दूसरे अध्याय में जाते ही भगवान तो वैसे ही रहे भगवान का नाम अच्युत का सेनियोर उभियोर मध्य संस्थापे में अच्युत अच्युत तो अच्युत सुमन तीन बार आया गीता में एक तो यहां आया एक ग्यारहवा अध्याय जो 42 श्लोक में आया है और एक अंत में आया नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादा मया अच्युता शीतोष में गत संदेह करी से वचनम तब आपके आगे पालन में वहां आया। तो तीन जगह क्या बात हुई कि अर्जुन की तीन दशा हुई पहले तो जोश आया हुआ मैं चित्त करूंगा जोर से इसमें बोला है वो और हुक्म दिया दोनों सुनो में याव देता निरीक्षे हम युद्ध का वन अवस्था यदि कामना वाले धृतराष्ट्र पुत्र के पक्षपात करके जीताने की इच्छा वाले युद्ध ये है उनको मैं देखूंगा ये सूर वीरता से कहा और ज्ञान में अध्याय में घबरा गया भगेण सब व्यक्त मन हो गई अंचल हो गई और इतना भूल गया इतना आख्या में खूब हवा आप कौन हो महाराज अरे कौन कौन गई कृष्ण है इतना बड़ा संभावना नहीं ऐसा बिल्कुल विकराल रूप इतना घबरा गया तो वहां पर अच्युत कहा और अंत में अब महाराज आपको जैसे करूंगा तो अर्जुन की तीन दशा हुई भगवान अच्युत ही वह जैसे ही आप चाहे उसकी कुछ भी दशा हो जाए तो वे अच्युत की अच्युत ही रहे निरंतर ऐसे पहले अध्याय में दूसरे अध्याय में क्या आया दूसरे अध्याय में भगवान ने तो पहले अध्याय में भी कहा है कई लोग कहते हैं पहला अध्याय गीता में कैसा गीता का उपदेश तो दूसरे अध्याय ये ग्यारहवें श्लोक से हुआ है तो ये कैसे पहला अध्याय गीता में कैसे आया, एक गीता पर्व देखा जाए तो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से गीता पर्व चलता है। गीता पर्व है तो गीता पर्व भीष्म पर्व के अवान्तर है, तो गीता पर्व वहां से चला, भगवत गीता चली 25वें अध्याय से। तो 25वां धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र ये है, तो गीता पहले अगर वहां से गीता होने से है, पर गीता वहां से न लिख करके 25वें लिखी तो पहले अध्याय में कहां गीता को उपदेश है, उपदेश दूसरे अध्याय में हुआ, तो पहला अध्याय गीता कैसे हुई। इसी श्रीमद भगवद गीता सुब्रम्ह योग शास्त्र कृष्णार्जुन संवाद संवाद तो फिर हुआ है ना, पहला अध्याय में हुआ है, पहला अध्याय हुआ है, पहला अध्याय के बीच में से असब व्यवस्थित दृष्टवा धारण कपिले प्रवृत्ति सस्व संपादे धनुरुद्य पांडव दुर्योधन तो आचार्य मुख संगम है, अजय धनुरुद्य वो तो दुराचार्य के पास गया दुर्योधन, और अर्जुन ने धन से भी हाथ धन से उठाया चलो इसी सूरवीरता से। ऐसा अर्जुन चेला बनता है, शिष्य से हम साधिमान तो हम प्रपन्न, तो दूसरे अध्याय में अर्जुन चेला बना है, शिष्य बन गया। तो शिष्य तो चलाने वाला होता है, रथी तो है, रथी बड़ा रथी है, वो रथी सारथी का चेला हो गया, तो भगवान का स्थान यहाँ बड़ा हो गया, गुरु जी हो गए, गुरु जी ऐसे उपदेश दिया। ऐसे उपदेश देते देते तीसरे अध्याय में भगवान केवल गुरु एक के ही नहीं है, सबके आदर्श भगवान ने सिद्धांत बताया कि यदि आचरती श्रेष्ठ तत्वदेवी सरोजना, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है उसके अनुसार दूसरे आचरण करते हैं, तो सबका आदर्श पुरुष गुरु होता है, वो एक होता है, आदर्श पुरुष होता है समुदाय का गुरु होता है, और सयत प्रमाण गुरु से जो आचरण करता है लोग आचरण करते हैं, जो प्रमाणित कर ले आज्ञा देता वो करते हैं। तो ये वहां पर आदर्श ये चलती आदर्श में 22, 23, 24 तीन श्लोक कहे भगवान ने स्वयं कहा, मैं सबको आतंकित होकर निराश होकर के ठीक पालन करता हूं, तो लोग भी ऐसे ही करें, ऐसी आदर्श रूप से हुए। एक बात और याद आ गई, 20वें श्लोक में अथ कहा ना, अथ तो याद होता है ग्रंथ के आदि में, तो ग्रंथ का आदि मानो दूसरे पहले ग्रंथ का आदि 20वें श्लोक से है, अथ व्यवस्था दृष्ट हुआ, और भगवान अर्जुन बोलेंगे अर्जुन वहां अर्थ खड़ा करो, भगवान ने वही रथ खड़ा किया बोल तो अर्जुन अब देख रहे थे पश्चिता समेतन गुरु, तो अर्जुन और कृष्ण का संवाद हो गया ऐसे पहले अध्याय में थे, तो अंत से शुरू होती गीता और अंत में इतने ज्ञानम आख्यातम, इसके बाद इत्यहं वासुदेव से संजय व्यवसाय कहता है, ऐसे अंत में इत्यहं वासुदेव से पास का संवाद इत्यहं गया, इसके बाद भगवान वास नहीं है, गीता प्रसांत होगी, अर्थ से इति तक ग्रंथ होता है, तो अब से इस तक ये गीता ग्रंथ हुआ। अब इसमें वे गुरु बड़े आदर्श पुरुष बड़े, तीसरे अध्याय में चौथे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, कब अर्जुन भगवान ने कहा कि योग मैंने ये पहले सूर्य को कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र से अपने पुत्र उसने अपने पुत्र को कहा, ऐसी परंपरा राजेश लोग जानते थे, वही योग आज मैंने तेरों को कहा। तब अर्जुन ने पूछा कि महाराज उनका जन्म तो पहले हुआ, आपका जन्म अभी हुआ, तो आपने कैसे कहा, आपने मुझे कैसे दिया, कुछ नहीं अबे होने वाला भी, अरे बूढ़ों को जवान भी उपदेश दे सकता है, बालक भी दे सकता है, वृद्धाशिष या गुरु युवा होता है। तो भगवान कहते वो देते युवा है तो वृद्धि की बात नहीं। एवं परंपरा प्राप्त राजर्षयो विदु, परंपरा प्राप्त हुआ वो उपदेश दिया, अब नहीं अब सूर्य को उपदेश दे दे ये बात नहीं है। आदि में दिया आदो तुम, आदो कथम प्रोक्त हुआ आदो का आदि में, अभी तो कह सकते हैं, अभी कोई बड़े को भी क्यों दे सकते, छोटे भी दे सकता है, पर आदि में आपने कहा ये कैसे कहा। तो भगवान कहते हैं मेरे तेरे कई जन्म हुए, तू जानता नहीं मैं जानता हूं, ऐसे अब तो हमारा विशेषता बताई। और जन्म कर्म से दिव्यम, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, अलौकिक है, जन्म भी मेरा यू मनुष्यों की तरह नहीं है। यह जितने मनुष्य पशु पक्षी देवता राक्षस असुर जितने जन्मते हैं ये कर्म परवश होकर जन्म लेते हैं, मैं अपनी स्वतंत्रता से प्रकट हुआ हूँ, अपनी प्रकृति को वस्तु को स्वयं अजो भीषण आज अविनाशी परमात्मा रहता हुआ ही जन्म लेता हूँ मैं, मेरे में कमी नहीं आती, जन्म से छोटा नहीं हो जाता, अवस्था से बड़ा नहीं हो जाता, मैं एक रस में ऐसा हूं, ऐसी बात बताई। चौथे चौथे में ये बताई, तो पांचवे में भगवान ऐसी बात नहीं, ईश्वर तो क्या चौथे अध्याय में भगवान ने अजो भीषण अभ्य आत्मा भूता नाम ईश्वर भीषण आदर्श पुरुष का आदर्श करके मैं ईश्वर हूं साक्षात। एक बात याद है, ये बीच किसी ने पूछा कि भगवान कृष्ण योगी थे परमात्मा नहीं थे, तो मैंने कहा योगी होता है वो सच बोलता है झूठ बोलता है, मतलब अगर झूठ बोलते योगी भी नहीं हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आठ अंग होते हैं, उसमें पहले यम नियम आते हैं जिनमें सत्य भाषण होना चाहिए। और कृष्ण कहते हैं ईश्वर मैं ईश्वर हूं, अगर भगवान को योगी मानो तो ईश्वर सिद्ध हो जाएगा, भगवान खुद कहते मैं ईश्वर हूं, तो ईश्वर रूप से प्रकट हुए चौथे में। पांचवें महेश्वर हुए, भोगतारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर सर्वतम भोगता और प्राणी मात्र का सूर्य ऐसा मैं हूं, ऐसा जाए तो शांति मिल जाती है। पांचवा अध्याय में कहा, पांचवा अध्याय में ऐसा कह करके छठे अध्याय में भगवान में बहुत विशेष बातें कही। छठे अध्याय से प्रकरण जरा दूर हो गया है, क्यों कर्मयोग और ज्ञान योग की बातें भगवान कह रहे थे, तीसरे में दो निष्ठा कही, दूसरे दिन ऐसा ते भीतर सांख्य मुक्ति योग विभाग बताया, परंतु वहां छठे अध्याय में बात तीजी निकली है। अर्जुन ने जो प्रश्न किया था सांख्य योग कर्म योग के संन्यास संक्रमण पांचवे अध्याय में संन्यास संक्रमण कृष्ण अपने योग एकम तन्मे गुरु विश्वेशम, इसी विषय को भगवान ने छठा अध्याय में छेड़ा। अनाश्रिता कार्य कर्म करो चाहिए, कर्म योग श्रेष्ठ है, इस बात को कहा छठे भगवान ने। ये कहते कहते कर्मयोग से सिद्ध पुरुष होते हैं उनके लक्षण बताए, वो समता होती है, समता में सूर्य मित्र मध्यस्थ बंधुषु साधु स्वपेश पापेशु संबुद्धि विशेष थे, ये योग योग विशेषता बताई। यहां से अगर ये दसवें श्लोक से भगवान ने योग का विशेष बता दिया, ध्यान योग, यहाँ पहले विवेक का प्रकरण चलता है, अपन जो कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष कहते हैं, तो कर्ण सापेक्ष अपने यहाँ छठे अध्याय दसवें श्लोक से चलता है। और कर्ण निरपेक्ष की बात यह है मुख्य गीता, तो मन लगाना ऐसे योगाभ्यास करना, इसका मतलब कि जो कर्मयोग से सिद्धि मिलती है वही सांख्ययोग से सिद्धि मिलती है, और वो सिद्धि ध्यान योग से भी मिलती है। इस वास्ते भगवान ने ये बताई, इसने क्यों बताई, अर्जुन कहते हैं मैं श्रेय चाहता हूं, या निश्चितम श्रेयसा तन्मे ब्रूहि, यह श्रेय एक और एकम तन्मे ब्रूहि। दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, पांचवें अध्याय में निश्चित श्रेय पूछा है। तो श्रेय कल्याण करने की बातें सब गीता में कह दी सार सार रूप से। इतना आनंद शास्त्र शास्त्रों की बातों में जो कल्याण करवाते है वे गीता में कह दी, छोटे से ग्रंथ में बहुत विलक्षणता से। तो कल्याण की बात सब कह दी तो ध्यान की बात कहनी चाहिए ना। कर्मयोग ज्ञान योग ही नहीं है, ध्यान योग है, भक्ति योग है। तो ध्यान योग की बात करने का आत्मसंयम योग नाम सत्तोध्याय है। तो योगी उनकी सत्तोदस में से चलता है। ये ध्यान योग की बात भी इस तरह बताई। ध्यान योग की बात बताते हुए भगवान ने बहुत विलक्षण बातें बताई। एक अलौकिक बात बताई छठे अध्याय में। ज्ञान योग के लिए तो सर्वभूत समात्मा नम सर्वभूतानि च आत्मनि ये है। भक्ति योग के लिए यो माम पश्यति सर्वतः सर्वं समय पश्यति है। कर्म योग में तो कर्मणि अकर्मी है पश्यति अकर्मणि च कर्मी है। इन विचार का तीन श्लोक बड़े विशिष्ट श्लोक है। ये तीनों में एक प्रणाली सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वभूतानि च आत्मनि और यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वं च मयि पश्यति। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखे। तो तीनों योगों की विचित्र बात बताई भगवान। ये बातें बता दू सचे अध्याय में कुंभ योग का वर्णन किया। उसमें अर्जुन ने पूछा कि महाराज मन के चंचल होने से स्थिर स्थिति नहीं होती। तो मन के चंचल होने स्थिर स्थिति नहीं होती है ध्यान योग में। कर्ण सापेक्ष में होता है, कर्ण निरपेक्ष नहीं है। कर्ण निर्विकर्ण है ही अपेक्षा ही नहीं है, एकाग्र हो चाहे न हो। तो उसका भगवान ने उत्तर दिया। उत्तर देते हुए भगवान ने एक विलक्षण बात कही कि जो कल्याणकारी काम करने वाला है उसकी दुर्गति नहीं होती। अर्जुन की घबराहट हुई है इसमें छठे अध्याय में। गीता भर में कृष्ण संबोधन 9 बार आया है पूरी गीता में। तो 2 बार समुद्र यही आ गया, 9 जो 7 बचते हैं, 7 तो पूरी गीता को मिले। 2 एक प्रश्न में यही अति श्रद्धेयो प्रेतो योगाचरित मानस अप्राप्त योग सुरक्षित काम गति कृष्ण गति। एतन में संशयन कृष्ण से तुमने 2 बार कहा, 3 श्लोकों में 2 बार कृष्ण कह दिया। पूरी गीता को 7 बार मिला, 3 श्लोकों में 2 बार कह दिया। अर्जुन घबराहट है कि महाराज उभय भ्रष्ट हो जाएगा। संसार को तो वो चाहता नहीं और परमात्मा तथा हुई नहीं, योगाचर्य मना हो गया। तो फिर वो बीच में ही छिन्ना भ्रगी तरह जैसे बदल का टुकड़ा दूसरे बदल में जावे और बीच में छिन्न भिन्न हो जाता है, ऐसे उस साधक की क्या दशा होती है। दोनों दिन से गया संसार का रहा परमात्मा का तो नष्ट हो जाता है क्या। ये घबराहट तो इस घबराहट को भगवान ने कहा 40 श्लोक में। 5 संबोधन भगवान ने दिए अर्जुन के लिए। तो 5 संबोधन दिया तो बहुत प्यार से कृष्ण के, तो अधिक से अधिक कृष्ण संबोधन आया है। अर्जुन के अधिक से अधिक 38 बार 5 संबोधन आया है।